हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपरान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद छठा अध्याय नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद। श्लोक नंबर 38। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अहो देवर्षे धन्योयम् यत्कीर्तिं शाङ्घधन्वनः, गायन् माध्यन्निदं तन्त्रा गायन् माध्यन्निदं तन्त्र्या, रमयत् यातुरं जगत् अहो देवशिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयन् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत् यातुरं जगत् शब्दों का अर्थ अहो देवर्षि धन्योऽयम्। अहो मतलब धन्य हो देवर्षि देवताओं के ऋषि। धन्योऽयम् यानी सफल हो। यत जो कोई कीर्तिम अर्थात यश सांग धन्वना। सांग धन्वना का मतलब होता है भगवान जो कि कीर्ति गाने योग्य हैं। वो भगवान जो केवल एकमात्र भगवान ही कीर्ति गाने के योग्य है जिसकी हम कीर्ति गाएं। गायन माध्यन इदम तंत्रा। गायन मतलब गायन करते हुए, माध्यन मतलब आनंद लूटते हुए, इदम इस तंत्रिया वाद्य यंत्र के सहारे रमयत जीवन दान देता है आतुरम जगत अर्थात विपन्न संसार को। अनुवाद देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो धन आनंद लूटते हैं ब्रह्मांड के समस्त विपन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम ले जाना है। यह उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यास देव का संवाद शीर्षक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। वेद व्यास जी बता रहे हैं कि नारद क्या करते हैं। वे कहते हैं अहो देवर्षि धन्योयम्। ये देवर्षि नारद धन्य है, सफल है, अर्थात यही जीवन की सफलता है। क्या सफलता है? वो कहते हैं यत् कीर्तिम् शाङ्ग धन्वनः, क्योंकि वो सदैव उन भगवान की कीर्ति, उन भगवान का यश गाते रहते हैं जिनका, जो कि वाकई में इस योग्य हैं कि जिनका यशोगान किया जा सके। वाकई बाकी जो भी संसार में जिस जिस व्यक्ति या जिस जिस वस्तु का यशोगान हम करते हैं वो सब टेम्पररी है। उसमें यश का मतलब होता है कि वो वस्तु जो इटर्नल हो, जिसका वो क्वालिटी कभी भी समाप्त होगा नहीं। जैसे संसार में अगर हम देखते हैं कुछ लोग सुंदर हैं तो कितने साल के लिए? 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद सुंदरता समाप्त हो गई। अगर सुंदरता समाप्त नहीं भी हुई, क्योंकि कुछ कुछ लोग अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी अपने बालों को हमेशा कभी भी वाइट नहीं होने देते और फेस पर भी है ना एंटी एजेस ऐसी क्रीम्स लगाते हैं जिससे उनकी झुर्रियां वुरियां भी नहीं, मतलब वो अपनी सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं, हो सकता है, परंतु अपने जीवन को कब तक बरकरार रखेंगे? समाप्त हो जाएंगे। आज की जो हीरोइन है कल हो सकता है कि आप छोड़ो कुछ भी बन के आ सकती है। क्या ऐसे बोलते जो अपने आप को बहुत ज्यादा शास्त्र बताता अपने शरीर की बहुत ज्यादा नुमाइश करते हैं, अगले जन्म में वृक्ष बन कर आएंगे तो हम किसी ऐसे लंबे लंबे वृक्ष की तारीफ करेंगे, कितना सुंदर है, कितना इसके इसकी जड़ें कितनी सुंदर है, इसका तना, इससे सुंदरता उसमें सुंदरता नहीं होगी। उसी तरह से दूसरी भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं कि जो टेम्पररी, मतलब जिसका यशोगान हो रहा होता है, कोई समझो बहुत बड़ा किसी मुल्क का राजा हो या कोई है ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो किसी काम में, लेकिन वो सब टेम्पररी है, समय के साथ साथ सब समाप्त हो जाएगा। और वास्तविक यदि कोई गुणगान करने के योग्य है तो वो भगवान है, क्योंकि उनका यश कभी समाप्त नहीं होगा, प्रतिक्षण वर्धमान। भगवान के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सीमित नहीं है, इसीलिए अनंत शेष करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो सदैव भगवान की यशोगान करते रहते हैं हजारों मुखों से, परंतु पर्याप्त नहीं है इसलिए वो चुप नहीं करते, कंटिन्यूअस करते रहते हैं। ये वायु जो पवित्र होती है ना वो उसी शेषनाग के द्वारा भगवान के यशोगान का कीर्तन करने से पवित्र होती है, और ये वायु जब पवित्र बहती है तो संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। तो केवल भगवान का यशोगान ही ऐसा है जो कि जीव करेगा तो उसे क्या प्राप्त होगा। आगे बताते हैं गायन माध्यन निदम तत् संत्रिया। माध्यन का मतलब होता है आनंद। अब देखो ये जो संसार में जितने भी जीव प्राणी है ना उनका एक ही लक्ष्य है, हर एक जीव की एकमात्र इच्छा क्या है कि वो आनंद प्राप्त करे, चाहे वो किसी भी योनि में हो, लेकिन जीव की एक ही इच्छा है कि मुझे आनंद आना चाहिए। वो चाहे जो भी कर रहा है, अगर वो सो रहा है तो आनंद प्राप्त करने के लिए, अगर जाग रहा है तो आनंद प्राप्त करने के लिए, अगर खा रहा है तो आनंद प्राप्त करने के लिए, अगर कुछ भी वो कर रहा है, किसी से प्रेम कर रहा है तो आनंद प्राप्त करने के लिए, किसी से शत्रुता निभा रहा है तो भी आनंद प्राप्त करने के लिए, जीव की एकमात्र इच्छा है आनंद की प्राप्ति। और वास्तविकता तो ये है कि हर एक जीव का अधिकार है आनंद प्राप्त करना। जीव की रियलिटी है आनंदित रहना, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान का मतलब है सच्चित आनंद विग्रह, वो सत है, चित है और आनंद का भंडार है। और क्योंकि जीव उसी भगवान का अंश है, इसलिए आनंद का, आनंद प्राप्त करने का उसे पूरा पूरा अधिकार है। और उसका लक्ष्य आनंद है, क्योंकि उसकी स्थिति यह है, वास्तविकता यह है कि उसे आनंद, आनंदित होकर रहना है। आनंद प्राप्त किए बगैर जीव नहीं रह सकता, उसे इसलिए जीव सदैव ढूंढता है आनंद को। परंतु यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जीव आनंद प्राप्त करने का एक गलत रास्ता अपनाता है, गलत तरीका अपनाता है। वो सोचता है कि आज मेरी जो स्थिति है, इसमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके मैं अपने आप को आनंदित कर सकता हूँ। मानते हैं, सब लोग यही सोचते हैं। एक मनुष्य क्या सोचता है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी पत्नी चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और अच्छा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। उसी तरह से एक सुअर क्या सोचता है कि मुझे अच्छा, पर्याप्त मात्रा में मेरी एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए सुअरी, और एक बच्चे होने चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में यदि मुझे मल खाने को मिल जाए तो समझो मैं संतुष्ट हूँ। हर एक जीव अपनी अभी जिस रोल में है, उसी स्थिति में अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके खुद को आनंदित करना चाहता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दें कि अगर आपको एक ड्रामे में एक हिरन का रोल मिले, ठीक है, आप असल में, आप अभी सोचो जो भी आप हो वही हो, और अगर आपको ड्रामा दिया जा रहा है, एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आपको हिरन का रोल, तो अब उस ड्रामे को सक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिरन का रोल बहुत अच्छे तरीके से करना होगा ना, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे ना उस कैरेक्टर में, फिर आपको अच्छा रोल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, बोलेगा ये तो सही करता नहीं है। तो फिर आपको हिरन का रोल तो अच्छा करना होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, जैसे मैं मनुष्य हूँ। तो अगर उस वो हिरन ये सोच रहा है कि यदि पर्याप्त मात्रा में मुझे घास खाने को मिलेगी तभी मैं आनंदित होऊंगा, तो क्या ये वास्तविक आनंदता प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो केवल एक कैरेक्टर निभा रहा है हिरन का, और वास्तविक में वो क्या है, मनुष्य है। तो वास्तविक आनंद उसको तब मिलेगा जब रोल कर लेगा, और जब उसका ना मतलब रोल वाइंड अप होगा और डायरेक्टर उसको बहुत सारे धन देगा, आपने अच्छा किया, और उस धन के द्वारा वो दूसरा जो मनुष्य जो खाते हैं वो प्रसाद लेकर खाएगा, तो उसको आनंद मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि हम इस भौतिक जगत में अभी रोल कर रहे हैं, सब वास्तव में हमारा ये वास्तविक शरीर नहीं है, क्योंकि ये तो टेम्पररी, जैसे हम लोगों ने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें ये रोल मिला है, तो हमको ये रोल बहुत अच्छे से निभाना। लेकिन याद रखना है कि अगर हम अब वास्तव में कौन है, अगर हम मनुष्य नहीं है वास्तव में, हम ये भगवान बताते हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, अगर जीव की कोई असलियत है तो भगवान की दासत्व है। तो यदि वो अपना काम सही वास्तविक कार्य नहीं करता है तो वो आनंदित नहीं होता है। तो जीव भी जब तक भगवान की शरण नहीं लेता है तब तक आनंदित नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी वास्तविक स्थिति है। अगर एक मछली है, वो ये भूल जाए कि मैं मछली हूँ और आके सोचे कि मैं आनंदित होना चाहती हूँ, झूले में बैठूंगी, आ रहे ना इस तरह से एरोप्लेन में विजिट करूंगी, LCD पे बैठ के मूवी देखूंगी, मर जाएगी तड़प तड़प के, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उसी तरह से जीव आत्मा की एकमात्र स्थिति ऐसी है कि वो भगवान को प्रसन्न किए बगैर, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़े बगैर आनंदित हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, चाहे भौतिक लेवल पर उसे कितनी ही सुविधाएं, कितने ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस, कितना ही अच्छा अच्छा पार्लर में तैयार होके आ जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, भौतिक बहुत 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 सुविधाएं, और बहुत सारी वस्तुएं भी प्राप्त कर ले, लेकिन आनंदित होने का एकमात्र तरीका यहाँ पर बता रहे हैं, गायन माध्यन निदम तंत्र, केवल भगवान के यशोगान करने से ही जीव आनंदित हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। और यमयत रमयत या तुर जगत, और ये जो इतना खुद भी केवल जो शुद्ध भक्त होता है वो इतना सेल्फिश नहीं होता है कि केवल आनंदित हो, अपने खुद आनंद कर रहा है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन नारद मुनि के विषय में बता रहे हैं कि वो केवल स्वयं को आनंदित प्रदान करने के लिए नहीं जीते, बल्कि रमयत या तुर जगत, ये भक्त के अंदर क्वालिटी होती है कि उसके अंदर इतनी करुणा होती है कि वो संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए भी वो हर जगह पर प्रवीजिकार आचार्य, वो हर जगह पर जाते हैं और जहाँ 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 देखते हैं कि जीव कितने कष्ट में है, दुखी है, तो वहाँ पर उनको भगवान की लीलाओं के, भगवान की गुणगान के विषय में बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीव का वास्तविक आनंद इसी में है। वे सब भक्त के अंदर करोड़ों योग्यताएं होती हैं, परंतु यहाँ पर जो मुख्य बात बताई जा रही है वो है करुणा। कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते थे, उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम ले जाना, यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि नारद, हम सब जितने भी हैं गौड़िया वैष्णव जितने भी हैं वो सब नारद मुनि हमारे अथॉरिटीज में सेकंड नंबर पर आते हैं। जैसे पहले है ब्रह्मा, भगवान ने ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। हमारी परंपरा के मुख्य आचार्य हैं नारद मुनि और वो हमें सिखाते हैं कि आपका कर्तव्य है कि समस्त जीवों को भगवान के पवित्र नाम के विषय में, भगवान की पवित्र लीलाओं के विषय में सुनाओ। वैसे तो भक्ति के बहुत सारे लक्षण हैं, यहाँ पर हम 6 लक्षण भक्ति के हैं उनके विषय में बताएंगे कि पहला क्या है, युक्त वैराग्य। यानी युक्त वैराग्य का मतलब होता है अनुकूलस्य संकल्प, जितनी भी भगवान की भक्ति में वस्तुएं अनुकूल हैं वो सारी वस्तुओं को स्वीकार करना। हमें पता हो कि जैसे श्रवण करना, अगर हम श्रवण करना छोड़ देंगे तो भक्ति नहीं कर सकते। खाली भक्ति का मतलब भले ही बैठ के आप माला कर रहे हो और है ना जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हो या वृंदावन में चले जाते हो, लेकिन श्रवण और साधु संग छोड़कर हम भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और उसी तरह से बहुत सारी दूसरी ऐसी वस्तुएं के भक्तों का संग करना, प्रभात साधना करना और अपने जप में बहुत ज्यादा भाव, और ऐसी चीजें हैं जिससे जैसे प्रोग्राम्स अटेंड करना जिसमें भगवान की भक्ति के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती। तो मतलब अनुकूल से संकल्प, जो वस्तु और जो व्यक्ति मुझे भगवत भक्ति करने में सहायता करेगी मैं वो कार्य करूंगा। और दूसरा है प्रतिकूल से वर्जना, कि जो प्रतिकूल है हर वो व्यक्ति और हर वो वस्तु जो भगवत भक्ति करने में मेरे रास्ते की बाधा बन रही है मैं उसका परित्याग करूंगा। भक्त बनने के लिए हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि भले ही हमारे बॉयफ्रेंड्स हो, हमारी गर्लफ्रेंड्स हो, भले हमको आनंद आता है उनके साथ, लेकिन हमारे शरीर के मतलब वो तो एक इग्नोरेंस है, इल्यूजन है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये शरीर हैं और इनसे प्रेम करके या इनके साथ रहकर हमें आनंद आएगा। लेकिन एक बुद्धिमान भक्त को ये पता होना चाहिए कि यदि ये सब, ये मूवी देखना, थिएटर जाना और ऐसी जगहों पे जो फ्रेंड बहुत सारी मिलकर ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, जुआ खेलते हैं या फिर, तो टाइम वेस्ट जिससे हो रहा है आपका, जो भक्ति में आपको प्रतिकूल नहीं है मतलब ऐसा आप अनुकूल नहीं है और भक्ति से गिराने वाली वस्तु है, जैसे श्लरूप को स्वयं बताते हैं उपदेश अमृत में श्लोक नंबर 2 में बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पोनियमाग्रह जनसंगस्तलोल्यं च षड्भिर् भक्तिर् विनश्यति। कि ये छह वस्तुएं ऐसी हैं जो आपकी भक्ति का सर्वनाश करेंगी। अत्याहार, भौतिक वस्तुओं की अधिक से अधिक इच्छा, अधिक से अधिक धन संग्रह करना, अधिक से अधिक वस्त्र आभूषण और भौतिक वस्तुओं की और लालसा। अत्याहार प्रयासश्च, यानी कि बहुत अत्यधिक उधम करना, ये चाहिए ये चाहिए उसके लिए। प्रजल्पो, भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातें करना। और नियमाग्रह अर्थात विधि विधानों को, ऐसे विधि विधानों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। आग्रह, नियम आग्रह का मतलब होता है अत्यधिक आसक्ति वस्तुओं, उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। और आगे जनसंगश्च, यानी ऐसे लोगों की संगति करना जो कि भगवान के भक्त नहीं है। लौल्यम अर्थात भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक अभिलाषा या लालच रखना। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमें भक्ति से हमेशा नीचे गिराती हैं, प्रतिकूल हैं कृष्ण भावना की उन्नति के लिए। तो भक्त का कर्तव्य है कि इन समस्त वस्तुओं का परित्याग करें और जो अनुकूल हैं उनको स्वीकार करें। और भक्ति का तीसरा लक्षण है श्रद्धा, कि मैं जो भगवान के लिए परित्याग किया है और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वीकार किया है, अवश्य भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे, अवश्य मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और मुझे, उस भक्त को यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं को जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इन समस्त दुखों से नहीं बचा सकता, लेकिन और संसार में भी कोई नहीं कर सकता ऐसा। इस संसार में हो सकता है कोई डॉक्टर है, किसी के पास ज्यादा धन है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसकी जान बचा देंगे, लेकिन एक बार दो बार आखिर क्या होगा, वापस मृत्यु, वापस से जन्म। एक बार बीमारी से बचा लिया तो ये गारंटी नहीं है कि दोबारा आप कभी बीमार नहीं होगे। लेकिन भगवान बताते हैं कि देखो, तुम यदि मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम इन समस्त दुखों से बिल्कुल बरी हो जाओगे, आपको कभी भी ऐसा कोई दुख नहीं सताएगा। माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जान लो कुंती पुत्र कि यह संसार में जब तक आते रहोगे तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे, भले ही तुम्हारे पास कितनी बड़े से बड़ी प्रोटेक्शन क्यों ना हो, लेकिन इस संसार में कुछ शाश्वत नहीं है। केवल मेरा धाम, मेरा सानिध्य, मेरा प्रेम ही शाश्वत है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और भक्त को इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिवो कृष्ण, कृष्ण को यदि मैंने सरेंडर किया है तो अवश्य वो मेरा मेरी रक्षा करेंगे और बारंबार इन भौतिक दुखों में मुझे नहीं गिराएंगे। इस भौतिक जगत में तो कदम कदम पर विपता है, ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि इस संसार में रहते हुए हम संपूर्ण सुरक्षित हो जाएंगे। ये संसार है दुखों का घर, इसलिए शास्त्र कहता है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्तदं पुण्ययशो मुरारी, कि ये भौतिक जगत तो ऐसा महासागर है दुखों का कि इसके एक एक कदम पे खतरा है, सागर है बहुत बड़ा सागर दुखों का। तो फिर क्या करना है आपको, महत् पदम पुण्य यशो मुरारी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है। तो वो बोला जाए क्या, शरण ग्रहण करने से इस भौतिक जगत के दुख समाप्त हो जाएंगे? तो बोला नहीं, भौतिक जगत दुखों का घर है तो वहां पर दुख रहेंगे, परंतु हो गया होगा क्या, भगवान के चरण कमल नाव का कार्य करेंगे। और भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदान, कि वो जो भव सागर जो करोड़ों करोड़ जन्मों के प्रयास से भी तुम नहीं पार कर सकते, वो गौखुर में भरे हुए जल की तरह तुम एक सेकेंड में पार कर लोगे यदि भगवान के चरण कमल रूपी चरणों की इस नाव को ग्रहण करोगे। तो वत्स पदम परम पदम, वो परम वत्स पद की भरे हुए जल की तरह इस परम
बहुत ज्यादा दुखदायक समुद्र को पार करोगे और कहाँ चलो जाओगे, परम धाम में, परम पदम। और वो कैसा है, पदम पदम यद्विपदानतेषा, वहां पर किसी कदम पर आपको कोई भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में सुखी होने का, आनंद होने का नहीं सोचो, कैसे तुम भौतिक जगत से बाहर निकलो ये सोचो। तो भगवान के जो चरण है वो अभय चरण है, इसलिए यदि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो जीव अभय हो जाता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद। क्यों? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये जो मनुष्य का जन्म जो आपको मिला है ना, कोई साधारण नहीं है, बहुत दुर्लभ है। बहुत बहुत तपस्याओं के बाद ही किसी को मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म में भी कृष्ण भक्ति। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेति तत्त्वतः। कृष्ण भक्ति तो उस मनुष्य जन्म में भी बहुत ही रेयर कोई होता है जिसे प्राप्त होती है। तो हमें इस अपने इस जन्म की और अपने इस जन्म में मिली हुई कृष्ण भक्ति की हमें महत्वता को जानना है, उसकी कदर करनी है। और भक्त का ये लक्षण होता है कि उसे भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होती है कि वो अवश्य मेरी रक्षा करेगा। इसलिए भक्ति में भले ही कोई बाधा आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई हमें डिस्टर्ब करता है, या फिर किसी तरह से हमें भक्ति नहीं करने दी जाती है, तो भी भक्त को अपने इस विश्वास पे हमेशा अटल रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद के जीवन में हम देखते हैं कि कितने कष्ट आए, मीरा के जीवन में देखते हैं कि उसे जहर भी पिलाया गया, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर वो जहर भी अमृत हो जाता है। और भक्त चाहे किसी भी, भले उसके पास इतना ज्यादा पावर नहीं भी होता, लेकिन फिर भी भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मोमेंट को बढ़ा रहे थे, संकीर्तन हो रहा था, तब वहां के जो नवद्वीप के काजी, चांद काजी हैं, उन्होंने कहा कि श्रीवास को जाके, मतलब श्रीवास को जाके कहा कि अगर तुमने इस संकीर्तन को खत्म नहीं करवाया, ये तुम्हारे घर में होता ना संकीर्तन, अगर खत्म नहीं हुआ तो हम आएंगे और राजा के सिपाही यहाँ पर आएंगे, तुम्हारा ढोल भार देंगे और तुम लोगों को बहुत तकलीफ देंगे, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी ये संकीर्तन मूवमेंट खत्म करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, संकीर्तन मूवमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए, ये नहीं रुकनी चाहिए, देखते क्या क्या करता है काजी। तो फिर हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की और संपूर्ण नवद्वीप में और भी विख्यात हो गया कि अभी और भी अच्छे तरीके से, मतलब अभी सपोर्ट मिल गया काजी का भी, कि वो भी है ना भगवान की, उन्होंने भी ये सपोर्ट दे दिया कि मेरे कोई भी काजी जो है, कोई मेरे बाद भी कोई आएगा तो वो भी संकीर्तन मूवमेंट को नहीं रोकेगा। मतलब भक्त को हमेशा यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे, मेरा कार्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये मेरी ड्यूटी है और आगे कृष्ण अवश्य ही मुझे संभाल लेंगे। भले ही मैंने समस्त अपने परिजनों का, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन सर्कल सबको परित्याग कर दिया है कृष्ण भक्ति के लिए, उसे फिर भी उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अब अकेला हो गया हूँ, अब कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण सदैव साथ देंगे। और कृष्ण जब साथ है तो भले इस पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन कोई भी हमारी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। और अगर कृष्ण हमारे खिलाफ हो जाए, भले पूरा संसार हमारे साथ आ जाए, परंतु कभी विजय नहीं हो सकती। केवल यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर कृष्ण होते हैं और जहाँ पर कृष्ण के भक्त होते हैं, विजय केवल वहीं पर होती है। तो भक्त को यह पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य प्रोटेक्शन देंगे। और नंबर चार है फुल्ली सरेंडर, पूरा का पूरा भगवान की शरणागति होता है एक भक्त। He have no separate interest. भक्त का और कोई भी अपना वहां अपना लाभ के लिए वो कभी भी नहीं सोचता, फुली डिपेंडेंट होता है भक्त भगवान के ऊपर, और ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाए तो समझो फिर मैं अच्छा करूंगा। नहीं, भगवान तुम्हें जैसा अच्छा लगता है। आ भक्त की केवल एक ही इच्छा है कि मैं कैसे तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, तुमने जिस स्थिति में मुझे रखा है थैंक यू उसके लिए, क्योंकि तुमने ये चॉइस किया ना। भगवान हमें उस स्थिति में नहीं रखते जिस स्थिति में हम, भगवान अपने भक्त का हमेशा कल्याण चाहते हैं, प्रेम करते हैं भक्त को, तो भक्त को वो स्टेज नहीं देते, वो स्थिति नहीं देते जो भक्त चाहता है, बल्कि उस स्टेज पे रखते हैं, उस स्थिति में रखते हैं जो कि भगवान ने उसके लिए चॉइस की है। क्योंकि भगवान के पास वह बुद्धि है जिससे भूत भविष्य और वर्तमान का के विषय में वो जानते हैं, तो भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो भक्त पूर्णतया भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। भगवान को ये नहीं कहता कि सरकमस्टेंसेस को चेंज करो तो मैं भक्ति करूं। भगवान को केवल ये कहता है हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, तुमने जैसा भी मुझे रखा है वो तुम्हारी कृपा है कृष्ण, अब मुझे ये बताओ कि इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वर्तमान समय में मैं कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। तो भक्त सदैव भगवान के ऊपर फुल्ली सरेंडर होता है, पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है कि मारो भी रखो भी जो इच्छा तुहार, तुम मुझे जैसा भी तुम्हें करना है आप मेरे साथ करो, मुझे खाली ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे खुश करूं। और नंबर 5 है तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु, भक्त सदैव हम्बल रहता है और विनम्रता के साथ अपनी ड्यूटी करता है। ये नहीं सोचता कि मैं अभी कितना बड़ा भक्त बन गया हूँ, मैंने हर उस वस्तु का परित्याग कर दिया जो कृष्ण भक्ति में मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, हर उस वस्तु को स्वीकार किया जो अनुकूल थी, और मुझे पूरा भगवान के ऊपर भरोसा है, इसलिए अभी मैं बहुत अहंकार नहीं, उसके अंदर फिर भी हमेशा विनम्रता होती है। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि अगर आपको भक्ति में सदैव आगे बढ़ना है, सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, तो अमानी न माना देना, अपने लिए कभी मान की कोई इच्छा मत करना और समस्त अन्य समस्त जीवों को मान देना, इसी से आप भगवान कीर्तनी है सदा हरि, फिर आप भगवान के सदा कीर्तन कर सकते हो। और छठी क्वालिटी होती है जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, करुणा का भाव। ये करुणा ही तो है जो एक भक्त को केवल अपनी साधना को इंक्रीज करने के लिए नहीं उकसाती है, बल्कि ये दिखाती है, जैसे नारद मुनि बताते हैं रमयत यातुरम जगत, कि वो जानता है कि क्योंकि मैंने तब तक संसार में आनंद प्राप्त नहीं किया जब तक कि मैंने भगवान के गुणगान नहीं शुरू किए, और जब अब ये समस्त संसारी लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जीव आत्माएं दुखी हैं, तड़प रही हैं दुख में, और इनका कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक कि वो वास्तव में भगवान के यश का गान नहीं करेंगे, इसलिए शुद्ध भक्त के अंदर ये कृपा होती है, करुणा होती है, और वो समस्त जीवों को, जैसे नारद मुनि बताए हैं, नारद मुनि के विषय में बता रहे सुत गोस्वामी, गायन माध्यम इदम तंत्र्या, वो खुद भी भगवान के यशोगान का गान करके आनंद प्राप्त करते, और रमयत या तो रम जगत। इसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुख नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान के धाम, सबको भगवान के धाम लेकर जाना। नारद मुनि के विषय में बताया श्रील प्रभुपाद जी ने कि नारद मुनि सदैव विचरण करते रहते हैं। पहले वो बहुत देर तक एक जगह पर बैठते, जैसे हमें मालूम है दक्ष प्रजापति ने जब 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और 10,000 पुत्रों को कहा तुम तपस्या करके आओ और फिर विवाह करो ताकि ना संसार की उत्पत्ति हो सके, जब वो तपस्या करके आ रहे थे तो नारद मुनि ने प्रवचन करके उन सबको ब्रह्मचर्य बना दिया। और फिर जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद मुनि ने ऐसा किया, तो दूसरे 1000 पुत्र उत्पन्न किए। और नारद मुनि जब वो भी तपस्या करके आ रहे थे, नारद मुनि ने उन्हें भी ब्रह्मचर्य बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक जगह पर टिकते हो, इसीलिए तो सबको ब्रह्मचर्य बना रहे हो। मैं इधर से संसार की उत्पत्ति करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये कार्य दिया, तुम सबको ब्रह्मचर्य बना रहे हो। अभी मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि तुम है ना एक जगह पर कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकोगे। रुकोगे ही नहीं तो प्रचार कहाँ से करोगे। लेकिन नारद मुनि ने कहा, भले तुम मुझे श्राप दे दो, भले जो भी हो, लेकिन मैं ये प्रचार नहीं छोड़ सकता। और फिर भी वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करते। यहाँ पर भी बताया कि रमयत यातुरम जगत, वो सदैव रमण करते रहते हैं। वो सदैव जीवन भर दुखी जीवों को कल्याण करने के लिए घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे भी उन लड़के और लड़कियों के माता पिता ने लगता है श्राप दे दिया है कि मेरे पास ही। अभी श्री प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बनाए जहाँ पर बहुत बहुत आदर होता, उनका बहुत ही सम्मान मिलता, परंतु किसी जगह पर टिकते नहीं थे। हर एक मंदिर बनता था, वहां पर वेल पूजा वूजा स्टार्ट हो जाती थी, तो श्री प्रभुपाद जी वहां पर उस जगह को छोड़कर नई जगह पे जाते थे। वहां पर नया प्रोजेक्ट, ये भी नहीं जानते थे कि वहां पर लोग कैसा बर्ताव करेंगे, कैसे लोग होंगे। वहां पर श्री प्रभुपाद जी इतने बड़ी आयु के थे, उनको प्रॉपर डाइट मिलेगी या नहीं होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं जानते थे। बस कहते उनके जीवन का क्या एक ही मात्र लक्ष्य था, जैसे नारद मुनि का, रमयत यातुरम जगत, कि वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके, भगवान की कथाओं को श्रवण करके समस्त जीवों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि जीव को इसके अतिरिक्त और किसी चीज में आनंद आने वाला नहीं। भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता 10.9 में, मच्चिता मत्कतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वास्तव में तुष्यन्ति और रमन्ति यानी कि दिव्य आनंद, दिव्य संतोष जीव को तभी प्राप्त हो सकता है जब वो कथयन्तश्च माम नित्यं, यदि वो सदैव मेरी लीलाओं का कथन करेंगे, इसी से उनको आनंद प्राप्त हो सकता है। तो जो महर्षिगण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो इतने कृपालु होते हैं कि समस्त जीवों को उनके कल्याण के लिए भगवान का संदेश देते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। मतलब ये उद्देश्य दिया श्री प्रभुपाद ने हमें अपने जीवन का, कि हमें ना केवल स्वयं इस भगवत भक्ति को सीखना है, भगवान के विषय में जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम महापुराण, इनको ना केवल पढ़ना और समझना है, परंतु हमारा ये उद्देश्य है कि हर उस व्यक्ति तक जहाँ तक हमारी आवाज जाती है, जहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी जीव दुखी हैं, हम देख रहे हैं कि संसार में सब तड़प रहे हैं, सब भौतिक आनंद को ही अपनी आत्मा का आनंद समझ रहे हैं, इसी माया में मोहग्रस्त हैं, तो उन्हें बताना है कि ये वास्तविक आनंद प्राप्त करने की वास्तविक वस्तु नहीं है, ये भौतिक आनंद से हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का गान करना, इसी से जीव का वास्तविक कल्याण होगा। तो ये उद्देश्य हम सबका है। हम देखते हैं कभी कभी बहुत बड़े बड़े शुद्ध भक्त होते हैं, सन्यासी गण होते हैं, वो सब मायापुर में चले जाते हैं और वहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है, वहाँ पर बहुत टाइम तक कीर्तन होता है, मेला लगता है, और जब वो ऐसा नहीं है, ये गोल नहीं समझते, ऐसा नहीं सोचते कि चलो ठीक है हम सब सन्यासी यहाँ पर मायापुर में आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर आनंद करेंगे, दूसरे लोग मरते रहे, वो ये गोल नहीं होता। वो क्या करते हैं, केवल कुछ समय के लिए जाते हैं, वहाँ पर रिचार्ज होते हैं वापस से, यानी कि क्योंकि जब भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों का संग मिलता है तो अच्छी तरीके से बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, और फिर वापस से सब लोग अपने अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं कि नहीं हमें, हालांकि वास्तव में भक्त की इच्छा होती है कि मैं सदैव भगवान के साथ जुड़ा रहूं, ऐसी जगह पे ना जाऊं जहां पर कि मुझे ना पता नहीं कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, कोई भक्ति करने का चांस मिलेगा, क्योंकि वो जा सकते हैं वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में जाए चले जाएं और मायापुर में चले जाएं, लेकिन वो जानते हैं कि वास्तविक जो भक्त के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है, करुणा, कि वो दूसरों को भी भगवान के पवित्र नाम का जप, पवित्र नाम के विषय में बताएं और जिससे दूसरों का कल्याण हो सके। इसलिए नारद मुनि के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं, यत कीर्ति शान गंधर्वन, वो सदैव उन भगवान के जो कि वास्तव में यशोगान करने के लायक है उन भगवान की कीर्ति करते थे, और गायन माध्य निदम तंत्र, और इससे वो बहुत ज्यादा आनंदित होते थे, रमयत यातुरम जगत, और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते थे। हम जितना ज्यादा भगवान के शरणागति होंगे उतना ही अधिक भगवान हम पर कृपा करेंगे। ये सिर्फ एक श्रद्धा की बात है कि कितनी हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा के साथ जब हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू करेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि वो फौरन, हमें भक्त को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। वो श्रद्धा से भगवान की भक्ति स्वीकार करता है तो कंप्लीट परफेक्शन में भी टेक सम टाइम। फौरन ऐसा नहीं है कि आज से हमने भक्ति शुरू की या 10 साल में या 15 साल में हमें परफेक्शन प्राप्त होगी, लेकिन भक्त को क्या करना है, यू जस्ट अलाउ कृष्णा टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बस कृष्ण तुम मेरी मेरी इस जीवन के सारथी बन जाओ, तुम जिधर ले जाना है इस मेरे इस रथ को लेकर जाओ, आप बस मैं मुझे मैं पूरा का पूरा फुल्ली सरेंडर हूँ, मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हार, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है मेरे लिए करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न करूँ, तो कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। अब यहाँ पर हमने आज इस एंड किया इस श्लोक का, और इस अध्याय को खत्म समाप्त हुआ कृष्ण कृपा से, और इसमें हमने पढ़ा नारद, पहले वेद व्यास जी बहुत ज्यादा दुखी थे और वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए, नारद मुनि को अपने दुख का कारण बताया कि मैंने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा परंतु फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तब नारद मुनि ने कहा, संतुष्ट भी कैसे होगा, क्योंकि वास्तविक संतुष्टि तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम भगवान के यशोगान का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में तुमने अपने शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब चीजें लिखी, लेकिन कृष्ण प्रेम को तुमने छुपा दिया, तो यदि तुम कृष्ण प्रेम के विषय में नहीं लिखोगे तो तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा और ना ही अन्य जीवों को आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि जो तुमने लिखा है उससे तो और भी, क्योंकि ये जीव वैसे भी भौतिक भोग करने की उसकी इच्छा होती है हृदय में, और वही भौतिक भोग तुमने शास्त्र के आधार पर उन्हें दे दिया, ये करो तो तुम्हें ये आनंद मिलेगा, ऐसा करो तो तुम्हें ये आनंद मिलेगा, उन्हें जीवन की वास्तविकता क्यों नहीं बताई कि इन भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम ही आनंद प्रदान कर सकता है। इस तरह से तुमने और भी धर्म के नाम पर उन्हें ये सब वस्तुएं प्रदान करके उनको और भी ज्यादा मोहित कर दिया। तब नारद मुनि ने अपने विषय में बताया कि मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और दासी पुत्र होने के कारण मेरे अंदर कोई दूसरी क्वालिटी थी नहीं, परंतु मेरी माता की ये सेवा होती थी कि जब वहां पर जंगल में शुद्ध वैष्णव लोग आते थे तो उनकी सेवा करती थी, और मुझे बहुत आनंद आता था माता की सेवा में उनका हाथ बटाने में, मुझे क्योंकि भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं आता था, खेल कूद में मैं छोटा था, 5 साल का बच्चा था, भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद प्राप्त नहीं होता था, तो फिर मैं जब भी वो शुद्ध वैष्णव लोग आपस में चर्चा करते थे मैं उनकी बात को बैठ के सुनता था। इस तरह से कृपा की उन्होंने मुझ पर, क्योंकि साधु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आप उस कृपा को प्राप्त करने की इच्छा करते हो। तो अगर हम हमारे घर पे भी अगर भक्त आते हैं, अगर हम लोग उनको इंटरेस्ट से नहीं सुनते हैं उनकी बात को अपने, कोई लोग क्या करते हैं मोबाइल में देख रहे होते हैं, टीवी में देख रहे होते हैं, भक्त बैठा तो बैठ यहाँ पर प्रसाद खा और मोबाइल से बात कर रहे, नहीं सीरियस होना पड़ेगा हमें। साधु के जो वचन है वो हमारे जीवन को कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हमें संजीदगी के साथ उनको श्रवण करना पड़ेगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक बार कृपा हुई उनकी और उन्होंने मुझे अपना उच्छिष्ट प्रसाद प्रदान किया, जिसके कारण मेरे समस्त अपराधों का नाश हो गया, हृदय पवित्र हुआ और उनके चले जाने के बाद मेरी माता का देहांत तो हो गया और एकमात्र संसार की बेड़ी मेरे पैरों में थी वो भी कट गई, और ताकि मुझे पता चला अब कि मैं अपनी माता का भी कल्याण तभी कर सकता हूँ जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, क्योंकि एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो अपनी 21 पीढ़ियों को भगवत धाम में पहुंचा देता है, चाहे वो नरक में ही क्यों ना हो। तो फिर ऐसा करते जब भगवान की भक्ति स्टार्ट की, भगवान का ध्यान लगाना स्टार्ट किया, तो भगवान ने उन्हें हृदय में दर्शन दिए और उसके बाद भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद आकाशवाणी ने मुझे कहा कि इस जन्म में तो तुम्हें अब भगवान के दर्शन दोबारा नहीं होंगे, अब जब तक आप जियो तो तब भगवान के पवित्र नाम का जप करो। और इसे बताया नारद मुनि ने कि फिर मैंने वो अपना पूरा जन्म भगवान की भक्ति में ही गुजार दिया और बहुत सारे सहस्र युग पर्यंत 4,32,00,00,000 वर्ष के बाद जब भगवान की इच्छा से पुनः ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो फिर मरीचि आदि ऋषियों के साथ साथ में भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण ने मुझे ये वीणा उपहार में दी और मैं वीणा को बजाते हुए सदैव भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करता रहा। और जब भी मैं भगवान के इस वीणा को बजाता था, प्रगायन्तः स्ववीणाया तीर्थपाद प्रयश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतस, जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ तो त्यों ही मेरे हृदय स्थल पर वो आ जाते हैं, ऐसा लगता है मैंने उन्हें आमंत्रित किया हो। तो यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं कि कितना पवित्र भगवान के साथ मेरा सानिध्य जुड़ गया उन शुद्ध वैष्णवों के कारण। फिर नारद मुनि कहते हैं, एतद् यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शया मोहु भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचरणानुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कि संसार को पार करने का, दुखों को दूर करने का केवल एक ही रास्ता है कि भगवान के पवित्र नाम का, भगवान की लीलाओं का हमें सदैव कीर्तन करना है। तो आगे बता नारद वेद व्यास जी के इतना नारद मुनि ने कहा और अंत में कहा कि तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछा था, जन्म कर्म रहस्यम ये भवतश्चात्मतोषणम, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जिससे तुम्हारी आत्मा को संतोष उत्पन्न होगा। उसके बाद वेद व्यास जी कहते हैं कि एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्रम वीणया रम्यन यात्रिक्ष कौमुनि, कि वो चले गए जहाँ उनकी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जो बताना था वो सब बता दिया। और आज नारद ऐसे बताया वेद व्यास जी ने कि देवर्षि नारद जानते हैं कि वास्तविक आनंद कृष्ण कथाओं को, कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण के पवित्र नाम को कीर्तन करने में ही प्राप्त होगा, उनकी लीलाओं को श्रवण करने से ही जीवों का कल्याण होगा। तो वो सदैव उन दुखी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान की कथाएं गाते रहते हैं और हर जगह पवित्रण करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने नारद जी के विषय में पढ़ा। अब यहाँ पर रह गए तो सिर्फ एक छोटी सी बात कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन पिछले जन्म में क्या हुआ था ऐसा कि नारद मुनि को दासी का पुत्र बनना पड़ा। अवश्य संसार में हमें जो भी जन्म मिलता है तो कोई ना कोई उसका कारण होता है, तो नारद मुनि दासी का पुत्र क्यों बने और दासी का पुत्र बनने के बावजूद भी उनके अंदर भगवत भक्ति करने की, भगवान के विषय में श्रवण करने की अथवा भगवान के बारे में कीर्तन करने की इच्छा क्यों रही? तो शास्त्र बताता है कि नारद मुनि पिछले जन्म में, यानी दासी का पुत्र बनने से पहले वाले जन्म में, वो गंधर्व थे। उपबरहण नाम था उनका, और वो गंधर्व थे, बहुत ही सुंदर थे, इतने सुंदर थे। गंधर्व जो होते हैं वो, उनका काम क्या होता है कि वो देवताओं की सभाओं में गाते हैं, मतलब कीर्तन गाते हैं, और वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। संसार में भी देखते हैं, कोई अगर अच्छा गा रहा होता है, मृदंग बजा रहा होता है सारंग, और ना दिखने में तो हम लोग बोलते हैं एकदम गंधर्व लगता है, और गाता भी कितना सुंदर है, एकदम गंधर्वों की तरह। तो ये गंधर्व जो होते हैं संसार के नहीं होते हैं, उनका एक अलग लोक होता है, और उनका कार्य होता है वो सदैव यश गान करते हैं भगवान का, और अलग अलग कीर्तनों में इस तरह। तो एक बार समस्त प्रजापतियों की सभा लगी हुई थी, और इस उपब्रह्मण्य गंधर्व को ये कार्य मिला था कि वो भगवान की मतलब वो कीर्तन करके सुनाए, और उसमें वहां पर कुछ अप्सराएं भी होती हैं, वो भी डांस कर रही होती हैं, नाचती हैं। तो वो जब वो अप्सराएं बहुत सुंदर थी जो नाच कर रही थी, नृत्य कर रही थी, तो शुरू में तो वो थोड़ी देर के लिए, समस्त प्रजापति, ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए थे, शिव जी बैठे हुए थे, और भी दूसरे प्रजापति, दक्ष प्रजापति सब बैठे हुए थे। तो वहां पर ये फिल्मी गाने वगैरह नहीं गाए जाते हैं, वहां पर केवल भगवत, क्योंकि उनको आता ही ये है, उनको पता ही ये है कि भगवत स्तुति के अलावा उनके कोई स्तुति करने के लायक नहीं है। तो वो कोई भी स्तुति कर रहे होते हैं तो भगवान की उसमें बात कर रहे होते हैं, तो अप्सराएं भी नाच कर रही होती हैं, तो भगवान के है ना उन गानों में, भगवान के जो गीत होते हैं जो गाए जाते हैं उन्हीं पर नृत्य कर रही होती हैं। क्योंकि वहां पर ये फिल्मी गाने होते नहीं है ना, जैसे यहाँ पर होते हैं, जैसे यहाँ पर लड़कियां डांस करती हैं, वो भक्ति नहीं होती है। लेकिन अभी देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या हुआ, तो जब उन अप्सराओं को देखा गंधर्व ने, तो देखने लगे कितनी सुंदर है ये, तो उन गाते गाते भगवान की सुंदरता की बदली में उनकी सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया, उनके अंगों का और उनके नृत्य का, उनकी कला का। जब बखान करना शुरू कर दिया तब ब्रह्मा जी देख रहे हैं उसको गौर गौर से, तभी ना दक्ष प्रजापति देख रहे, शिव जी को गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है, हम यहाँ पर कोई इसके फिल्मी गाने सुनने के लिए आए हैं, ये इनकी तारीफ कर रहा है। तो सब लोग, जैसे अभी हम किसी मंदिर में बैठे हों, भले ही कोई अच्छा बहुत गाने वाला हो या ढोल बजाने वाला हो, तो वो वहां पर पहले तो थोड़ी देर के लिए महामंत्र का गाना गाएगा और उसके बाद शुरू कर देगा ना, ऐसा होता है कहीं कहीं, हम लोग सुनते हैं हो जमालो शुरू कर देते हैं, आयो आयो पता नहीं क्या बोलते हैं, और बाद में बोलते हैं बिजा धीरे बेजा ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, तो वो गंधर्व भगवान की भक्ति, भगवान के गुणगान के बदले में उन अप्सराओं का गुणगान शुरू कर दिया उसने। और जब उन अप्सराओं की गुणगान शुरू कर दिए तो उन सब ने उन्हें ये श्राप दिया कि क्योंकि तुम शूद्र जैसा कार्य कर रहे हो तो जाओ धरती पर जाकर शूद्र बन जाओ। और फिर वो शूद्र का उन्हें जन्म दिया। वास्तव में भक्तों, भगवान ने हमें जो भी क्वालिटीज दी हैं, जैसे अगर वाणी, तो ये वाणी सबसे बड़ा हमारे पास गॉड गिफ्ट है, बहुत ही बड़ा वरदान है। हम देखते हैं जिसके पास वाणी नहीं होती है, जो बोल नहीं सकते हैं, मैं तो अपना अनुभव करूं कि भले ही अगर दूसरा कोई शरीर का अंग काम ना करे, लेकिन अगर वाणी बंद हो जाए तो उसी समय मर जाऊं, वरना, क्योंकि ये वाणी मिली है भगवान की गुणगान करने के लिए। लेकिन हम देखें कितना परसेंट हम इस वाणी से भगवान के गुणों का गान करते हैं, और कितना परसेंट हम फालतू बातों में जाया कर देते हैं। सदैव जब से जीव पैदा होता है शुरू हो जाता है अपना रोना रोना, और जिंदगी के अंत तक मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। लेकिन यदि हम इस वाणी को भगवान की गुणगान करने के लिए, भगवान के पवित्र नाम का गान करने के लिए, भगवान के विषय में वर्णन करने के लिए यूज करेंगे, तो वाणी का वास्तविक कल्याण उसी से होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो अवश्य भगवान हमसे ले लेंगे। कभी ऐसा हो कि भगवान ने, जो जैसे नारद मुनि को गंधर्व का जन्म मिला था, लेकिन भगवान ने उनको फिर, क्योंकि उन्होंने उसका सही सदुपयोग नहीं किया, तो उनको फिर दासी का पुत्र बनना पड़ा। अब दासी का पुत्र बनने के बाद उन्हें याद था कि मैंने इस वाणी को मिसयूज किया जिसके कारण मुझे यह शरीर मिला है। अब मुझे इस वाणी को भगवत कथा के अतिरिक्त और किसी चीज में यूज नहीं करना, लेकिन जब तक मैं श्रवण नहीं करूंगा तो कथा कैसे करूंगा। इसलिए वो भक्तों से श्रवण करने में उन्हें बहुत रुचि थी। उसी तरह से हम लोगों को वास्तव में भक्तों प्रचार वो नहीं कर सकता जो कि खुद से पढ़ना, जो मतलब भले कितना ही कोई एजुकेटेड हो, खुद से शास्त्र को पढ़कर हम प्रचार नहीं कर सकते। हमें अवश्य किसी शुद्ध वैष्णव से श्रवण करना पड़ेगा। कोई शुद्ध वैष्णव से श्रवण करके ही कोई प्रचार कर सकता है, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव बताते हैं, अब जो शास्त्र में लिखा हुआ होता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, वो हमें नहीं समझ में आती हैं। तो उससे डायरेक्ट से शुद्ध वैष्णव से सुनो, या फिर उनसे सुन सकते हैं हम जो कि शुद्ध वैष्णव से सुनकर हमें सुनाते। अपनी मर्जी से प्रचार नहीं होता है या अपने बुद्धि को इतना यूज करके, लेकिन जो भक्तों के द्वारा सुनते हैं उनसे हम सीखते हैं कि क्या इस ये जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है उसका क्या अभिप्राय है, या जो भगवान ने लिखा है उसका क्या अभिप्राय है। तो हमें अवश्य श्रवण को, अपने इन कानों को, भगवान ने ये जो कान दिए हैं जिससे हम सदैव दूसरी दूसरी बातें सुनते रहते हैं, उनको हमें यूज करना है। भगवान की कथाओं को श्रवण करने से अपनी जिह्वा को यूज करना है, भगवान की यशोगान करने के लिए, भगवान की पवित्र लीलाओं को, उनकी लीलाओं का, कथाओं का बखान करने के लिए। जैसा कि नारद मुनि कहते हैं, हमारी संपूर्ण इंद्रियां ये भगवान की प्रॉपर्टी है और भगवान की सेवा में इन्हें यूज करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूं।